Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, Anadi Maya is ne kya kar rakha hai ke Supta. ये विचार को जागृत नहीं होने देते, बस ये माया का लक्षण है कि सत्संग में चले तो माया आ जाएगी बीच में. अरे आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए. सत्संग तो साढ़े साल होता है, फिर किसी दिन सुन आएंगे. आज तो जी फलाना काम है. तो ये विचार के लिए गुंजाइश छोड़ती नहीं है. सत्संग में भी आ जाता है तो वहां भी माया आ जाती है. या तो ठीक समझते नहीं है, या उल्टा समझ लेते हैं और या सो जाते हैं. ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है, ग्रह का रजनाना जाता ते अति दुर्गम शैल विशाला एसर आवत अति कठिनाई. और अगर कोई आ भी जाए मान लो इस सर के ऊपर, तो आते ही नींद जुड़ाई हो, नींद आ जाती है. और फिर जब शांति पाठ हुआ तो आंख खुली, बाहर निकले तो बोले आज का क्या विषय था. ऐसा ही था. इन लोगों के पास तो एक ही विषय है, रोजाना रस्सी में सांप निकालते हैं और फिर रात को घुस जाता है. तो ये है कि भाई अनादि माया सुख, तो ये विचार को कुंठित करती है माया. कठोपनिषद में नचिकेता ने कहा कि आप हमको ये विषय भोग देने के लिए कह रहे हो, ठीक है, लेकिन ये तो जरयंति तेजा, ये तो आदमी के तेज का ही हरण कर लेते. जितना सुख में जिसके जीवन है उसकी विचार शक्ति, परमार्थ के बारे में कह रहा हूं, परमार्थ के बारे में उसकी विचार शक्ति उतनी ही कुंद रहती है. क्योंकि यहां तो सूक्ष्म विचार चाहिए, मोटे विचार से काम नहीं चलता. तो इसमें शुद्ध भी चाहिए बुद्धि और पैनी भी चाहिए, नौकीली भी चाहिए. अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्ध्यते, या भाष्यकार ने जो सुप्त शब्द का अर्थ किया है, बोले जब सो रहा है तो सपना ही देख रहा होगा कोई, तो क्या सपना देख रहा है. अब वो जरा हमको आपको कड़वे लग सकते हैं, लेकिन सब जगह ऐसे ही लिखते हैं. क्या सपना देख रहा है, तो कहते हैं मम अयम पिता, ये मेरे पिताश्री हैं, पुत्रोयम, ये मेरा बेटा है, ये सपना है. नप्ता, ये मेरा नाती है, पौत्र. क्षेत्रम, ये मेरी प्रॉपर्टी है, खेत है. पशवा, महाराज जी कहते हैं ये आजकल पशवा की जगह कार है कर लो. पहले तो पशु की सवारी करते थे, अब आज जो है कारों के ऊपर, हवाई जहाज इनके ऊपर चलते हैं. पशवा, अहम एषाम स्वामी, मैं इनका स्वामी हूं. सुखी, दुखी, क्षयतो अहम अनेन वर्धिता, अनेन इत्येव प्रकारान स्वप्नान स्थानद्वयेपि पश्यन् सुप्तः. बस इसी प्रकार से सोचता रहता, यही सपना है. यदा जीव प्रबुद्धते, अब जगे तो कैसे जगे, सपना टूटे तब ना। तो बोले कोई परम कारुणिक गुरु मिल जाए, अब वो कहे भैया तू ये सब वाला 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 नहीं है, पिता वाला, पुत्र वाला, संपत्ति वाला, ये तू वाला वाला नहीं है, ये तो सब विश्व तेजस प्राग के ही अंतर्गत है। तू तो प्राग सॉरी तुरीय वाला भी नहीं है, तो तुरीय तत्व है, तुरीय स्वयं तुरीय है, तुरीय तेरी संपत्ति नहीं है, तुम तुरीय हो अर्थात इनसे ऊपर हो, ट्रांसेंडेंटल अतिक्रमण करता है विश्व तेजस प्राग। तब वो कहते हैं अब जग गया ये, तो क्या उसे अनुभव होगा कि अजम, अब जो शरीरों के धर्म है वो मेरे धर्म नहीं है, ये जन्मना मरना बढ़ना घटना मोटा पतला रोगी दुखी सुखी ये सब या तो स्थूल शरीर के हैं या सूक्ष्म शरीर के हैं, एक शरीर से एक योनि से दूसरे योनि में जाना ये काय के हैं, ये कारण और सूक्ष्म मिलाकर के हैं, अपने को बीज मान रहे हो। अजम अनिद्रम, अब ये मेरे सपने जो हैं दिखें लेकिन मुझे कोई रस नहीं है, अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, बस ये उसको बोध हो जाता है नारायण अर्थात तुरीयपाद। इसमें अपरोक्षानुभूति अगर महाराष्ट्र के किसी ने पढ़ी हो प्रवचन तो उसमें एक दृष्टांत है धनकुट्टा का। एक भी पढ़ा लिखा बेचारा था, धान कूटता था घर में, भी वैराग्य हो गया उसे, वैराग्य के लिए कोई पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, बल्कि पढ़ाई लिखाई करके वैराग्य ठंडा पड़ जाता क्योंकि बहुत ज्यादा सोचता है ना आगे पीछे की, तो वो उसे वैराग्य हो गया। तो एक महात्मा के पास गया, महात्मा अच्छे थे, तो बोले भाई आश्रम में तो ऐसे हम नहीं रखते हैं, या तो तुम कुछ सेवा करो, शरीर से सेवा करो, धन से सेवा करो। बोले मैं तो धान कूट सकता हूं। बोले ठीक है, आश्रम में तो चावल चाहिए रोजाना, तो तुम ऐसा करो आश्रम के पिछले वाले गेट पर वो रखा हुआ है कूटने का उखल, उसमें धान कूटा करो तुम लोग। एक मंत्र बता दिया उसे, मंत्र बोलता जाए धान कूटता जाए, और तो उसे कुछ आता ही नहीं था। और जब वो महाराज सत्संग करें तो लाउड स्पीकर लगा रखा था आश्रम में, तो एक कान से सुन भी लेता था। अब देखो राम राम धान कूट रहा है वो और मंत्र चल रहा है उसका राम राम, ये तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, आप मतलब अपने व्यवहार में मंत्र का विनियोग कर सकते हैं ऐसे। तो क्या हुआ कि थोड़े दिनों में उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि किसी मतलब से तो आया नहीं था, वो तो सेवा करता था, और जो सत्संग में के शब्द कान में पड़ते थे उसके संस्कार बन गए उसके। अब वो स्वामी जी पड़ गए बीमार, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने आश्रम में लोग हैं सब लोग मेरे बारे में कुछ लिखें, हमारे गुरु जी कैसे, तो जिसका सबसे बढ़िया लेख होगा उसी को मैं उत्तराधिकार बना दूंगा आश्रम का। अब सब लोग लिखने लगे, क्योंकि उत्तराधिकारी बनने के लिए तो बहुत लोग लालायत थे, किसी ने लिखा कि हमारे गुरु जी तो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, किसी ने लिखा उन्हें तो कोई किसी प्रकार की दुनिया का छल छिद्र जितने भी मतलब अच्छी बातें हो सकती थी सब लिखे और लिख लिख करके पहुंचाए। और रोजाना वो स्वामी जी के यहां वो पढ़कर सुनाए जाए सत्संग में, अब वो भी सुनता था। तो उधर से बच्चे निकल कर जा रहे थे सत्संग के बाद, तो उस धनकुट्टा ने कहा कि क्या हो रहा है भाई, हमारी समझ में आया नहीं थी। बोले ऐसे ऐसे बात है, वो कमंडल और वो दे करके जाएंगे, उनकी हालत बहुत खराब है। तो लेख लिख कर सुना रहे हैं सब। अच्छा बोले भाई हमारी भी लिख दे, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, एक लेख हमारा भी लिख दे। तो बच्चे ने जो है लिख दिया, लिख के महाराज को जाकर दे दिया वहां। अब महाराज ने वो पढ़वाया तो उसमें लिखा था कि आत्मा तो आत्म काम है, पूर्ण काम है, उसे न किसी आश्रम की जरूरत है न किसी उत्तराधिकारी की जरूरत है। क्या आदमी के बिना दुनिया खत्म हो जाए, ऐसे कुछ तो भी लिख दिया उसने, वैराग्यपूर्ण और आत्मज्ञान से संपन्न। उसने कहा अब ये बुलाओ उसको। अब वो आया, हाँ महाराज, बोले ये ले कमंडल और ये ले चद्दर, तू इसका उत्तराधिकारी। बोले कि मैं तो धनकुट्टा हूं, धनकुट्टा ही रहूंगा, ये जिसको आपको देना हो दो, आत्मा इनका क्या करेगा। अब वो महाराज जितना भी वो बोले अरे ये व्यावहारिक सत्ता में सब चलता है, बोले परमार्थ में कोई सत्ता दूसरी नहीं है। बहुतेरा हिलाया उन्होंने, लेकिन उसने तो मान के दिया ही नहीं। बुद्धते तदा, भगवान की कृपा हो जा तो अजम मनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा, बोध हो जाता। देखो ईश्वर की कृपा की भी जरूरत है, ये भी बात आप इसको नीची बात मत समझना, वेदांतियों में जरा ये बात कमजोर हो जाती है। गुरु कृपा तो चाहिए, आत्म कृपा भी चाहिए, लेकिन ईश्वर कृपा भी चाहिए। क्यों, मैं महाराज श्री की बात सुना रहा हूं। वो कहते हैं ये दुनिया तुमने बनाई है क्या, अब जिसने ये दुनिया बनाई है तो उसकी भी तो इच्छा चलेगी इसमें कि नहीं चलेगी, कि तुम इस दुनिया से बाहर निकलो कि नहीं निकलो। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, तो ये क्या भक्तों ही के लिए कहा है क्या। वो तो एक स्टेज है जहां पर के कर्मों का समर्पण हो जाता है। इससे पहला वाला श्लोक जो है वो ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसी की ये संपूर्ति है। क्या श्लोक है ये, तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अब कर्म तो सारे के सारे उसने मेरे में संन्यस्त कर दिया, तो चाहे ज्ञानी हो नारायण चाहे भक्त हो, इस स्टेज में तो आना ही पड़ेगा उसे। ये तो सर्वाणी कर्माणी, एक दो चार नहीं है, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्य मत परा, और मेरे से अधिक वो किसी को बुद्धि से स्वीकार नहीं करता। बोले संसार का वैभव ले ले, नहीं चाहिए मुझे, तो आप ही चाहिए। अनन्य नैव योगेनो अब अनन्य योग हो गया, माने किसी दूसरे के साथ वो जुड़ा नहीं। अब मेरा स्मरण कैसे करता है ये भी देखो। माम ध्यायंत उपासक, ये ध्यायंत जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अंग्रेजी में बोलूं शायद समझ में आ जाए। आजकल अंग्रेजी में ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ध्यान करते हुए, ध्यान की क्रिया का सातत्य, प्रेजेंट पार्टिसिपल। माम ध्यायंत उपासत, बस उनकी उपासना यही है कि ध्यान हो रहा है, चित्त वहीं टका हुआ है, कर्म कुछ करना नहीं है, किसी के साथ जुड़ना नहीं। तो भगवान कहते हैं भगत जी अब आपकी जिम्मेदारी मेरी आ गई है, लोक की भी और परलोक की भी, परमार्थ की। तो सबके लिए है यह, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे, तो ईश्वर की इच्छा के बिना कोई संसार से निकल नहीं सकता। तो बोले ईश्वर की इच्छा एक्स के लिए क्यों होगी, वाई के लिए क्यों नहीं होगी? बोले वो तो तैयार है, मगर सिर्फ एक्स ही चाहता, वाई चाहता ही नहीं है। एक ने पूछा महाराज से कि महाराज जी कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर के भी ना रहे और उधर के भी ना रहे। तो महाराज जी बोले तुम इधर के ही रहो। जब तुम्हारे मन में दुविधा है कि इधर के न रहे उधर के न रहे, तो जहां हो फिर वहीं रहो ना, क्यों विकल्प क्यों करते। तो ईश्वर की इच्छा के बिना कोई नहीं हो सकता। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो आपके हर इच्छा का साक्षी है, जानता है। आप सच्चे मन से जो चाहते हो वो आपको मिलता है। जेह पर जाकर सत्य सनेहु, सोता ही मिलहि न कछु संदेह। अब कहते हैं कि जब प्रपंच अद्वैत हो गया तो प्रपंच दिखना नहीं चाहिए, मगर हमको तो ये दिख रहा है साहब। और हमको ही क्या, हमारे गुरुजी को भी दिखता है? बताओ हमें कोई ऐसा जिसको ये प्रपंच न दिखता हो। प्रपंचो यदि विद्येत तो निवर्तेत तो न संशय, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। अरे भाई ये माया मात्र है द्वैत जो है, ये संसार ही माया है कि तुम्हारी आंख भी माया है? इंद्रियां भी तो सब माया ही है, मन बुद्धि जिनके द्वारा ये सब देख रहे हो ये भी तो एक सब मिलाकर के माया है ना। तो ये तो कहीं गई नहीं है। तुम इस दुनिया का तो चाहते हो कि ये तो ना दिखे, लेकिन आंख बनी रहे हमारी, ऐसा नहीं होगा। तो ये समझ लो कि ये माया मात्र है, जादू का खेल है, चल रहा है। चल रहा है चलता रहेगा, न चले अपने को क्या करना। प्रपंचो यदि विद्येत, प्रपंच यदि ये होता वास्तव में तब तो निवर्तते इतना संशय, तब तो निवृत्त हो जाता। झूठा हूं सत्य जाहे बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। नारायण, जब सांप वहां है ही नहीं, दिखता है तो दिखने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, डरो मत। बोले क्यों ना डरे, जब सांप दिख रहा है तो? बोले ये देख लो कि यहां पर सांप हो नहीं सकता। परमात्मा में मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप सत हो तो मृत्यु से पार हो, परे हो। विकल्पो विनिवर्ते तो कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। अब बोले अच्छा दुनिया न दिखे या दिखे, लेकिन ये गुरु शिष्य शास्त्र ये तो इन सब में तो सत्यत्व बुद्धि बनी रहेगी ना। बोले कब तक बनी रहेगी? जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक इनको पूजो, इनसे ज्ञान ग्रहण करो। और भगवत कृपा से जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, उस दिन बेमानी है। लेकिन बेमानी होने पर भी क्या अपने बाप को आप बाप नहीं बोलोगे? तो इस शरीर का तो पिता पिता ही रहेगा ना। ऐसे ही जिसने ज्ञान दिया वो गुरु का शरीर तो आपके लिए गुरु तुल्य ही रहेगा। अब लोग तो कहते हैं मैं गुरु जी का बेटा हूं तो मुझको भी मानो। पंजाब में तो गद्दी चलती है, गुरु गद्दी चलती है, जो भी गद्दी पे बैठ गया वही गुरु। ये आध्यात्मिकता नहीं है ना। गुरु तो वही होता है जो हमको ज्ञान कराए, बाकी तो महाराज बोलते थे कि बनारसी गुरु है सब, बनारस में सबको गुरु ही बोलते हैं। कौ गुरु तो अच्छे सेंस में प्रयोग नहीं होता, ये सदगुरु है। एक गुरु गीता है ना स्कंद पुराण में, तो उसमें बहुत सारे गुरुओं की व्याख्याएं की गई हैं। तो प्रथम गुरु तो माता है, सब जानते ही हैं। दूसरे नंबर पर पिता है, तीसरे नंबर पर जो आपको ABCD या काखा गागा सिखाते अक्षर ज्ञान कराता है। नहीं पहले तो हाँ, पहले तो यज्ञोपवीत कराएगा कुछ पुरानी परंपरा में, फिर वो गुरु हो गया यज्ञोपवीत कराने वाला, फिर जो अक्षर ज्ञान कराता है वो गुरु हो गया, फिर क्लास में दर क्लास बढ़ते चले गए। अब हमें तक जाने कितने टीचर आए और सब कोई सभी गुरु रहे ना रहे। अब फिर PhD के भी गुरु होते हैं ना रहे, और डीलिट का कोई गुरु नहीं होता है। बोले अब तुम गुरुओं के गुरु हो गए। वो स्वयं अपनी थीसिस अब लिख सकता है। तो इसी तरह से इसमें भी यही चलता है। तो ये गुरुत्व जो है ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है ना। अपना कल्याण जब तक नहीं होता तब तक गुरु शास्त्र इन सब में सत्यत्व बुद्धि रखनी चाहिए, और उसके बाद भी जहां पूजन की बात हो वहां इनका पूजना चाहिए, और जहां आदर की बात हो आदर करना चाहिए, लेकिन अपने से अभेद भी उनका अनुभव करना चाहिए। एक बुढ़िया बाबा जी के भगत थे, तो प्यारे भगत थे, तो पैसे की थोड़ी तंगी हो थी तो ऐसे ही रहते थे बेचारे। वो तो उन्होंने कहा तुम अपना मकान बेच दो, जब तुम अकेले हो तो मकान बेच दो, मकान क्यों पाल रखा है? उससे जितने साल रह गए 80 साल से ऊपर चले गए थे। तो बोले वो तो मैंने बाबा के कहने से बनवाया, तो बोले इस समय मैं बाबा हूं। तो मैं तो वहां बैठा था उस समय। बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये कैसे क्या कह सका। बोले देखो मैं सुबह से शाम तक 50 बार कहता हूं मैं बाबा हूं, मैं बाबा हूं, मैं बाबा। गुरु से भी जब तक आप ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि मेरे द्वारा गुरु ही बोल रहा है, गुरु से आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक गुरु का ज्ञान आपकी बुद्धि में उतरेगा नहीं। तो नारायण ये 18 कारिका इसकी हो गई, और जितना मतलब की बात थी वो तो सब आ ही गई है। कहा सुना बाप, फिर मौका मिलेगा फिर सेवा करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे महान संत उनकी दिव्य वाणी हमें सुनने का सौभाग्य मिलता है। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि लगता है कि मैं हमारे पूर्व जन्मों का कोई बड़ा भारी पुण्य है, तभी ऐसे संत यहां आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन 15 दिनों में हमने जो कुछ भी सुना जीवन का सार है। स्वामी जी ने कहा कि जो कुछ है सो ब्रह्म है, जगत सारा ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही ओंकार है, ओम है। ओंकार के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं है। जीवन जीने की प्रणाली हमें कैसे जीना है स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी की बातों को हम जीवन में उतारें तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। हम सब सत्संगी भाई बहन हैं और हमारा उद्देश्य एक ही है कि सत्संग के माध्यम से हम अपना कल्याण करें, और इसीलिए हम यहां पे आते हैं। स्वामी जी ने कहा कि कुछ लोग यहां सोने सो जाते हैं। स्वामी जी ऐसी बात नहीं है, सुनने में आनंद आता है तो आनंद के साथ निद्रा भी आ जाती है, ये भी एक आनंद का विषय है। लेकिन आप हमें जगाते हैं, हमारा सौभाग्य है। मैं इन शब्दों के साथ आपकी आप सब की ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।